جوان نوجوان اسلامی حکومت نفاذ کی کوشش کر رہے ہیں کے لیے اور سردار جوان جو مقامات مقدسہ سے لیا کے لیے داعش کے لیے زبر مانا کے لیے مومن جہاں جہاں ان کی جان ماں باپ اور عزت کی حفاظت کی سورہ الحمد کی تلاوت
قرآن اور
ये सोशल साइंस का टॉपिक है, गुफ्तगु हो रही है जिन आयत की, जिस आयत की तिलावत की शरफ हासिल कर रहे हैं हम, सूरह अजरात 49 चैप्टर है, 49वां सूरा, इसकी पहली आयत है जिसमें आदब सिखाया जा रहा है मोमिनीन को, बिहेवियरल पैटर्न सिखाया जा रहा है कि किस तरह से तुम्हें अगर मोमिन है तो क्या करना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ऐ जिन्होंने ईमान को कबूल कर लिया है, हमने बताया था गुफ्तगु के दरमियान ज़िंदगी को दो ही रूप से चला सकते हैं, एक वो फिक्र जिसमें ये दुनिया कुछ नहीं है, माती है, ख़त्म हो जाएगी, और ना ही कब्र है, ना ही आसमान, आने सवाल है, ना कुछ है। अगर ये पर्सपेक्टिव होगा या तसव्वुर जहानी होगा तो इंसान को कुछ करना नहीं है, कत्ल करो, मज़े उड़ाओ, जो चाहे करो, निकल जाओ। लेकिन एक तसव्वुर जहानी दीनी है जिसमें इंसान को मसऊल रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि तुम्हारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा तुम्हारा मसऊलियत रखता है, रिस्पॉन्सिबल है इस आलम में कि तुम्हारी कब्र में एक एक चीज़ का सवाल होगा, और उसी तरह से तुम्हारे बरज़ख की दुनिया आसान बनानी हो तो तुम्हारे किरदार ही के ज़रिए से बना सकते हो। ये तसव्वुर जहानी है दीनी कहते हैं इसको, यानी पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजियस पर्सपेक्टिव, एक वो है जिसमें दुनिया कुछ नहीं है, मज़े करो, और ये पर्सपेक्टिव पहले ही इब्तदाए हयात से अब तक चल रहे हैं, प्यार कुरान ने पेश किया है। जैसे दो भाइयों के दरमियान जब पहला कत्ल हुआ तो एक भाई ने पूछा, कुरान ने नकल किया है, वत्लो अलैहिम नबा इब्ना आदम बिलहक इत्तरब कुर्बानन फतुक्बल मिन अहदिहिमा वलम यतक़ब्बल मिन अल-आख़र काला लअक़तुलन्नका। दो भाइयों का किस्सा सुना है रसूल, ये किस्सा बहुत हक पर है, कुरान का हर किस्सा हक वाला किस्सा है, कोई झूठे किस्से कुरान में नहीं है। कुरान किस्सों की किताब नहीं है, कुरान साइंस की किताब नहीं है, कुरान हिदायत की किताब है। अगर किस्से बयान कर रहा है कुरान तो हिदायत के लिए है, अगर साइंटिफिक चीज़ें पेश कर रहा है तो इंसान की हिदायत के लिए। दो भाइयों ने कुर्बानी पेश की, एक की कुर्बानी कबूल हो गई, एक की रद्द हो गई। जिसकी रद्द हो गई उसने कहा लअक्तुलन्नका, अरबी जबान है, लज्जत है, उन्होंने ताकीद सकीला आखिर में शब्दा के साथ नूर जो आया है तशदीक के साथ, इसके माना यकीनन उसने प्लान बना लिया, मैं तुझे यकीनन यकीनन कत्ल करूंगा। जैसे आज दाइश ने बना प्लान बना लिया कि हम ख़त्म करेंगे लअक्तुलन्नका। दूसरा भाई, कॉमन बिहेवियरल पैटर्न बच्चों के लिए होता यह है कि दो भाई अगर झगड़ा करते हैं, एक कहता है कि मैं लगाऊंगा तमाचा, दूसरा कहता है कि मैं भी लगाऊंगा। हम भी बचपन से गुजर चुके हैं, आप भी बचपन से गुजर चुके हैं, बच्चों के झगड़ों में होता यह है कि अगर मैं मारूंगा तो मैं भी मारूंगा। लेकिन यहाँ पर दो पैटर्न अलग अलग हैं, एक भाई कहता है कि मैं यकीनन तुम्हें कत्ल करूंगा, दूसरा जवाब में ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। इसने कहा एनामा यतक़ब्बलल्लाह मिनल मुत्तकीन, अल्लाह मुत्तकीन के कबूल करता है। देखिए दो पर्सपेक्टिव अलग अलग हैं, दो जिंदगी, एक ही घर में दो बच्चे पढ़ रहे हैं, एक की दुनिया अलग है, दूसरे की दुनिया अलग है। एक कह रहा है कि मारो खाओ, कत्ल करो, खून बहाओ, दूसरा कहता है कि मैं कर नहीं सकता इसलिए कि मैं अंडर दी सर्वेलेंस ऑफ अल्लाह, मैं अल्लाह की निगाह पे चल रहा हूँ, तुम अल्लाह की निगाह के बगैर नहीं चल रहे। दाइश कह रहा है कि हम कत्ल करेंगे, हम ये कहेंगे तुम कत्ल कर दो, लेकिन हम कत्ल होने वाले नहीं है इसलिए कि हम जिस्म नहीं है जो खत्म हो जाए, हम ये फिक्र हैं, फिक्र को तुम खत्म नहीं कर सकते। चुनाचे पेश किया उसने भाई ने कि ये तकवे की बात क्या है। बहुत अच्छा जवाब बच्चे दफा सा फिक्र करें और गौर करें इस चीज को, इज्तिमाई जिंदगी में कितनी अहम चीज है। लाइन बस तैयार का अंतुलनी योर हैंड स्ट्रेस टू स्किल भी, तुम्हारा हाथ मेरे कत्ल के लिए आगे बढ़ चुका है। मेरे हाथ बंधे हुए, देखिए बहुत अच्छी तरह से वो कह रहा है कि मैं कर तो करूंगा, दूसरा कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता। एक कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता इसलिए कि मैं उस आइडियोलॉजी को अपनाता हूं कि मेरे किरदार साजी के लिए मेरा अल्लाह देख रहा है। तुम्हारे हाथ खुले हुए हैं तो दुनिया में कुरान ने बताया जो कातिलीन है उनके हाथ खुले हुए हैं, उनके हाथ खुले हुए मारो। आप देखिए मगरिब का पूरा अगर टोटल सामने उनका सिनारियो सामने लाए, हमने अभी हाल ही में गुरु शुरू किए हैं मॉरल साइंस ऑफ इस्लाम के अनुमान से, वेस्टर्न कंट्री में भी मॉरल साइंस यानी अखलाकियात पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटी में, उसका एक साइंस है बाकायदा, उसकी साइंस के तरीके से पढ़ाते हैं, दुरूस हैं, तरीका है, पूरे अखलाक का महवा क्या है, जॉब में किस तरह से बात करना है, हाँ हैंडशेक कैसे करना है, किस तरह से बिहेव करना है, लिबास कैसे पहनना है, मुस्कुराना कैसा है, उनकी तमाम अखलाक का महवर जवाहर है, जाहरी चीजें। इस्लाम का अखलाक का महवर जवाहर के साथ बातिन है। बातिन क्या है? इस्लाम ये कहता है कि अखलाक न सिर्फ तुम्हारे बाहर अच्छे हों, घर में भी अच्छे हों, न सिर्फ तुम अपनों के साथ अखलाक बरतो बल्कि दूसरों के साथ भी अखलाक बरतो। तुम अपने वतन भी अजीज हो, दूसरे के वतन में भी तुम्हें अजीज होना चाहिए। तुम अपने वतन में भी गैर का एहतराम करो, गैर के वतन में भी गैर का एहतराम करो। बहुत अच्छी तरह से हमारे पास दीन इस्लाम ये कहता है कि इंसान इंसान है, खाओ बिलाल हो या सलमान। इस्लाम ने बिलाल और सलमान को देख के बताया और सुहैब रूमी को देख के बताया सरकार की सीरत में, ये रंगों में अलग अलग हैं लेकिन ये सब एक हैं, इंसान हैं। इन सब को इंसानों की ठीक तरह ट्रीट करो। अमेरिकन सिस्टम हम जब मुकाबला करते हैं तो अमेरिकन पब्लिक से हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमारी जो तकलीफ है आइडियोलॉजी से, फिक्र से है। सुनिए बहुत अच्छी तरह से, अभी हाल ही में यह किस्सा पेश आया, कैलिफोर्निया में एक शख्स ड्राइव कर रहा था कार को, सामने देखा कि एक कपल, एक जोड़ा हस्बैंड एंड वाइफ मियां बीवी कुछ बात कर रहा। आखिर गुस्से में शौहर ने बिल्ली को जब अपने कार में थी उसमें बाहर फेंका, पीछे वाले कार ने रोक करके उस बिल्ली को ले गया, कंप्लेन किया, उसका केस चला, बिल्ली को फेंकने वाले का केस चला, 3 महीने का जिंदान, 3 महीने की जेल हुई कि तुमने बिल्ली को जख्मी क्यों किया। इतना खूबसूरत कानून है, कहां के लिए? अमेरिका में बिल्ली जख्मी नहीं हो सकती लेकिन एक अमेरिकन हजारों को गले काट सकता है। दो अलग अलग मॉरल वैल्यूज हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं। इस्लाम ये कहता है तुम्हारे घर की बिल्ली भी बिल्ली है, तुम्हारे गैर की बिल्ली भी बिल्ली है, वो हैवान है उसका भी ख्याल करो, खाओ तुम्हारा हो के गैर का हो। सरकार जब फौजें तैयार होती थी एक मतलब रोक के कहते थे होशियार, देखे इज्तिमाई कानून सोशल साइंस खूबसूरत, हमारे नौजवान अगर चाहते हैं अंडर द इंफ्लुएंस ना जाए किसी गैर की आइडियोलॉजी के, गैर के अफकार के, दीनी फिक्र को समझे, दीन की उसात को समझे, दीन की बुलंदी को समझे, ये समझ के जब अमेरिका जाए तो अमेरिका छोटा नजर आएगा, अगर नहीं समझेंगे तो दीन छोटा नजर आएगा। तो इसीलिए लाजमी है कि दीन के इन वैल्यूज को समझे। बहुत अच्छी तरह से देखिए रसूलुल्लाह जब जाते थे सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में देखे उसूल इस्लाम के, दाइश इस्लाम से कोई रब नहीं है। सरकारी कहता था होशियार,
फौजें तैयार हैं, मार्च होने वाली है। कानून, पहला कानून, जब तक दुश्मन हमला शुरू ना करे तो नहीं करना। तवज्जो बता रहे हूँ, यानी आज की दुनिया में सारे कंट्रीज में डिफेंस मिनिस्ट्री है, ऑफेंस मिनिस्ट्री नहीं है। ये डिफेंस मिनिस्ट्री इस्लाम का दिया हुआ है। इस्लाम की तमाम जगह डिफेंस है, दिफाई जगह है, कोई जंग ऑफेंस नहीं है। सरकार ने कहा कि फौजें तैयार है, जा रहे हैं, लेकिन हमला पहला ना करना। चुनाचे कर्बला में इमाम हुसैन, हमला हमारी तरफ से नहीं होगा जब तक कि उधर से तीर नहीं आएगा, हमारा तीर जवाबन नहीं जाएगा। बहुत खूबसूरत कानून। उसके बाद जो भाग रहा है उसका पीछा ना करना, उसूल। जो मरीज है उसको मारना नहीं, जो औरत है उसको मारना नहीं, जो बच्चे हैं उनको मारना नहीं। तवज्जो बता रहे हूँ, यानी मैदान में जो मर्द बन के आए उससे लड़ो, उन कमजोरों से लड़ने से क्या फायदा होता है। दाइश अगर तुम मुसलमान हो, कम से कम सीरत नबी पर अमल करना चाहते हो तो इस सीरत को अपनाओ। तुम तो ना मुसलमान हो, ना इधर के हो, ना उधर के हो, इसलिए कि तुम किसी और के। अगर तुम इधर के होते तो कम से कम दीन की बात करते। सरकार फरमाते थे कि देखो आए हो, फौज तैयार है, दुश्मन का जब तक के वार ना हो तुम्हारा वार शुरू नहीं होगा। भागते का पीछा ना करना, मरीजों को ना मारना, औरतों पर हमला ना करना, बच्चों पर हमला ना करना। उसके बाद देखिए बहुत ही अजीब गरीब, दुश्मन की टेरिटरी में रहते हुए वहां के दरख्तों को ना काटना ना जलाना। अरे भाई, दुश्मन के टेरिटरी में दरख्त इतना एहतराम क्यों किया जा रहा है? दरख्त का ताल्लुक दुश्मन से नहीं है, इकोलॉजिकल सिस्टम ऑफ यूनिवर्स है, उस ग्रीनरी की जरूरत है। दुश्मन के घर में हो तब भी वही है। सलाम पढ़िए मोहम्मद वाले। हमको अपने मजहब पर फख्र करना चाहिए कि दीन हमारा ऐसा है। अगर कोई हमको गैर रिप्रेजेंट करे, हमारा दीन से रब्त उसका नहीं है। दाइश का इस्लाम से रब्त नहीं है, इसलिए कि उसूल इस्लाम उनके पास मौजूद नहीं है। कवानीन दीन 1400 साल पहले रसूलल्लाह ने क्या फरमाया कि इस तरह के उसूल हैं जंग के मैदान में। सुलह में तो कितने होंगे ऐसे के सामने कचरा भी पड़ रहा है तो मुस्कुरा रहे हैं। तो तवज्जो बता लें, देखिए दीन जो है मॉरल साइंस, तो ये मॉरल साइंस वेस्टर्न कंट्री के लिए कुछ और है, और वेस्टर्न कंट्री जब ईस्ट के लिए आते हैं इनका कुछ साइंस बदल जाता है। इस्लाम में इस तरह का कोई कानून है। चुनाचे एक केस आया मदीने मुनव्वरा में, एक केस हुआ एक यहूदी और एक मुसलमान के दरमियान, कोई गड़बड़ हुई। केस आया सरकार के पास, मुसलमानों का डेलीगेशन सरकार के पास आया, सरकार जरा कल के फैसले को बैठिए, जरा होशियारी से बैठिए, कहीं मुसलमान कन्विक्ट ना हो जाए, यानी मुसलमान मुजरिम ना हो जाए। यहूदी और मुसलमान का मसला है ना भाई, इज्जत मुसलमान की बर्बाद हो जाएगी। सरकार ने कहा जो हक होगा वही फैसला होगा। वहां सदारत में यानी कुर्सी अदालत में इंसान देखा जाता है, मजहब नहीं देखा जाता। चुनाचे दूसरे दिन सरकार ने कन्विक्ट किया इसको मुसलमान, इसलिए गलती उसकी थी। सारे मुसलमान का चेहरा उतर गया, ये क्या हो गया हमारे साथ? अरे तुम्हारे साथ कुछ हुआ लेकिन दीन में हुआ है। लेकिन दीन के उसूलों में प्रिंसिपल्स में ये दीन है। फलस्तीन में मुसलमान सबको साथ है, ताली उठा करके देखिए, किसी मुसलमान ने किसी का हक नहीं मारा था, किसी ने किसी को कत्ल नहीं किया था। जितना इस 70 साल में इजरायली हुकूमत ने जलालत की है वो कभी तारीख में इतना नंगवार है। क्यों? इसलिए कि दो प्रिंसिपल्स उनके अलग है। हमारे प्रिंसिपल्स दुश्मन के सामने भी वही हैं दोस्त के सामने भी। क्यों हमारे प्रिंसिपल ऐसे हैं? सलवात अलैहि मोहम्मद वाले एक भाई कहता है कि मैं कत्ल नहीं कर सकता, कैन आई किल यू? दूसरा कहता है मैं कत्ल करूंगा। उसने यकीन अल्लाह ताकीद सकीला, इसके माने अरबी के माने पूरा प्लान बना चुका था, इंटेंशन कर चुका था, नियत कर चुका, कत्ल करूंगा। दूसरे भाई ने कहा मैं नहीं कर सकता, तक ना दू, तुम्हारे हाथ खुले हुए हैं, मेरे हाथ खुले हुए नहीं है। इंकलाब ईरान से लेकर अब तक जितने भी काम हुए हैं उस इंकलाब के जवाब में हुए हैं। तो मुझे बता रहे बहुत अच्छी तरह से और एनालाइज कीजिए हालत को। इतना खूबसूरत इंकलाब दुनिया में, एक लहर दौड़ गई, एक नूर का इंतजार हो गया, दुनिया ने उम्मीदें ही दुनिया वाबस्ता करने लगी और इस खूबसूरत इंकलाब को दबाने के लिए जंगों का आगाज हुआ। इराक ईरान की जंग 8 साल है जंग, ईरान की जंग नहीं थी, हक और बातिल की जंग थी, सारी दुनिया में ली हुई थी, सारी दुनिया ने दिया था मदद किया था सद्दाम को, सारी दुनिया एक तरफ अकेले थे, उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन अल्लाह ने वादा किया था बदर की तरह तुम्हारी मदद करूंगा तो अगर तुम बदर की तरह मोमिन बन ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون। जो लोग अल्लाह को अपना रब कहते हैं और रब कहने के बाद अपने पैरों को जमा देते हैं, फरिश्ते नाजिल होते हैं, होते थे नहीं, आज भी इस्तकामत तुम दिखाओ, नाजिल होते हैं। चुनाचे देखा कि आप जंगे इराक और ईरान में, चुनाचे सद्दाम की उस पर ना रुकावट की वजह कुवैत पर हमला किया, आप सब जानते हैं तारीख को, मुझे उसमें जाना नहीं है, लेकिन ये सब प्री प्लान है, पूरा प्री प्लान है बाकायदा, क्योंकि वो इस्लाम का जो वेव जो फैल रहा था उसको कंटेन क्यों करें। हम एक हुसैनी और इमाम हुसैन डे में लाहौर यूनिवर्सिटी में थे, द डीन ऑफ लाहौर यूनिवर्सिटी उससे बात करने लगा, कहने लगा कि चूंकि इमाम खमेनी ने यह कहा था कि हम इस इनकलाब को एक्सपोर्ट करेंगे, और जो बता रहे हूं एक्सपोर्ट यानी सागर करेंगे दूसरे ममालिक को, लोग परेशान हो गए कि ये कैसा एक्सपोर्ट होता है, आका के पास आए आका ये कैसा एक्सपोर्ट करेंगे, समझे कि बॉक्स है जो मेल में जाएगा या प्लेन से जाएगा या शिप से जाएगा, आका ने कहा एक्सपोर्ट हो गया, इसलिए कि फिक्र जो है बॉक्स में जाती नहीं है, फिक्र जो है जाना तो चलेगी दुनिया तक, इसलिए कि फिक्र दीन है, वो दीन की फिक्र कहीं रुकती नहीं है, निकल गई। अब उसको कंटेन करने के लिए जियाउल हक, मैं जिसको जियाउल बादू कहता हूं, चला गया। उसको लाने वाले कौन है? यही लोग हैं, पूरी प्लान है। देखिए अलकायदा बनाने वाला वेस्ट, उनको खत्म करने वाला वेस्ट, तालिबान को लाने वाला वेस्ट, दाइश को लाने वाला वेस्ट, क्यों? इस्लाम को कंटेन करने के लिए, इस्लाम को दबाने के लिए। मगर ये याद रख लें, इस्लाम ये नहीं देखता कि मुसलमान क्या कर रहा है, इस्लाम ये देखता है कि हक वाले कितने हैं। जो हक वाले अगर मिल जाए तो इस्लाम कहता है कि उनके साथ हम देंगे, और वो देख रहे हैं आप कि इराक और ईरान में उतनी मदद के बाद इराक की वो पूरी 8 साल जंग का खात्मा हुआ, और उसके बाद फिर नई प्लानिंग हुई उसका भी खात्मा हुआ, अलकायदा की प्लानिंग हुई उसका भी खात्मा हुआ। अब जब आए सीरिया का मसला आया, वहां पर भी यही मसला आया, सारी दुनिया एक तरफ, जोरू का भाई है, सारी दुनिया एक तरफ थी, सारी दुनिया एक तरफ थी, लेकिन अकेला वो था। क्यों भाई डबल स्टैंडर्ड क्यों है? मॉरल मॉरल साइंस वालों, अगर इजिप्ट के लिए कानून है तो वही कानून मिस्र के, अगर कानून है तो सीरिया के लिए कानून क्यों नहीं है? जब इस मिस्र के लिए अलग बताते हो, एक मसला है अरब फारसी में, एक मकौला है, एक बम और दो हवा, एक सलवात पढ़े मोहम्मद हमारी बहन, जरा सा अच्छी तरह से सुने, संसार की जो चक्कर होती है होता है। گرمیوں کا زمانہ تھا، عموماً عراق میں بھی ہم جب پہلی زیارت میں گئے تو مجھے ابھی تک یاد ہے، وہ لطف اوپر چھت میں سوتے تھے، رات کو ٹھنڈا بہترین لطف آتا، چھت میں سو رہی تھی سانس، ایک طرف بیٹی تھی ایک طرف بہو، ہلکی سی ہوا چلی ٹھنڈی، بیٹی ماں کے قریب ہو گئی، بلکہ ماں نے کہا بیٹی قریب ہو جاؤ، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور ایک طرف بہو تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے بھی قریب ہونا چاہیے، وہ بھی بیچاری قریب ہونے لگی، تو ساس نے کوہنی ماری، ہٹو ہٹو گرمی ہو رہی ہے، تو بہو نے آسمان کی طرف سر بلند کر کے کہا اے خدا کہ قد بلند بالا ہستی، ایک بام کو ہوا دائی، پروردگار تو بھی کتنا عجیب قادر ہے، ایک چھت ہے مگر دو ہوا چلا رہا ہے، ایک ساس کے لیے ایک بہو کے لیے، ارے بھائی قانون تمہارے پاس انٹرنیشنل قانون، سب کے لیے انٹرنیشنل قانون ہے، اسرائیل کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، 500 سے زائد 560 یا 600 کے قریب یونو کے ریزولوشن کو پیرو تلا رون دیا گیا، اس کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی انفورس کرنے والا نہیں ہے، کوئی مورل ویلیوز کہاں ہیں تمہارے، دین یہ کہتا ہے کہ نہ مورل ویلیوز اگر سمجھ نہ ہو تو دیکھو برتاؤ بلال کے ساتھ بھی ویسے ہی کرو، سلمان کے ساتھ بھی ویسے ہی کرو، صہیب رومی کے ساتھ بھی ویسے ہی کرو، تمہارا کردار اتنا بدل ہو جائے بلند ہو جائے، تم لوگوں کو دیکھ کے فیصلے نہ کرو، کردار کو دیکھو، معنی یہ لا ترفع لا تقدم بین ید اللہ ورسول یہی ہیں، لا تقدم رسول اللہ اور اللہ کے حکم کے آگے مت بڑھو، سب سے بڑا حکم کس کا ہے، اللہ کا، اللہ اکبر، کیا معنی اللہ اکبر، گاڈ از گریٹسٹ کے معنی کیا ہے، یعنی میں نے یہ اپنا لیا ہے کہ میرے نزدیک قانون پروردگار عظیم، جب اس کی عظمت ہے تو میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اس سے دیکھیے سوشل سائنس کے قصے ہیں، اور میری بہن بھی سوشل سائنس ہی ہے، بہت اچھی طرح سے ایک سلوار پڑھے محمد والا، بات چیت سب مل کے بیٹھیے ذرا سا، دین کے قوانین دیکھیے کس طرح سے، اصل میں دین کا افہام، دین کا سمجھنا، دین کا پرسیو کرنا میرے لیے بھی بہت مشکل کام ہے، اس لیے دین جس بات کو کر رہا ہے وہ یؤمنون بالغیب، اس غیب کو شہود سے بدلنا، جو نظر نہیں آتا اس کو نظر آئے جیسے کر دینا، وہ ایمان نہیں آتا نظر، ایک بھائی نے کہا تو کروں گا تمہیں، دوسرے بھائی نے کہا میں نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ بنے ہوئے ہیں، کس نے باندھ دیا تھا ہاتھ کو، قابل کے حابیل کے ہاتھ کو کس نے باندھا تھا، وہ کہہ رہا تم قتل کرو، میں کروں گا، قابل کہہ رہا میں قتل کروں گا، بھائی کہہ رہا قتل کروں، دوسرا کہہ رہا میں نہیں کر سکتا، کیوں نہیں کر سکتے بھائی، مانا بے باس یدیا نقتلک، میرے ہاتھ کھلے ہوئے نہیں ہے تجھے قتل کروں، کیا کر کے کس نے باندھ دیا، نوجوان بچے پسند ہیں بہت اچھی طرح سے سمجھے، یونیورسٹی کالجز وغیرہ جانے کے بعد جو خناس بٹھایا جاتا ہے دین کے خلاف، جو پینیٹریشن ہوتا ہے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے، کیلیفورنیا میں ایک جوان بچہ میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا میں یونیورسٹی میں ایک لیسن لے رہا تھا، پروفیسر نے ایک جملہ کہا، میں شرمندہ رہا، میں کچھ بول نہیں سکتا، نے کہا کیا جملہ ہے، کہ اسلام از باربیرک، اسلام خونخا ہے، اور کیوں، اس لیے کہ قرآن میں ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، میں سر جھکا چکا تھا، مجھے جواب میرے پاس نہیں تھا، میں نے کہا یہی ہے، हम लोग मुसलमान होकर के यूनिवर्सिटी में नहीं जाते, यूनिवर्सिटी में जाने के बाद इस्लाम समझना चाहते हैं ना, मुसलमान होके जाइए यूनिवर्सिटी को आप समझा सकती है बहुत अच्छी तरह से। मैंने कहा बेटा अगर तुमको मालूम होता उससे उसी वक्त उसी क्लास में गया होते कि सर दिस इज रॉन्ग, 24 कंडीशंस हैं आपके काटने के लिए, उन 24 कंडीशनों को पूरा करने के बाद हाथ काट सकते हैं। कोई भी आज एग्जिस्टिंग मुस्लिम कंट्री में कोई कंट्री वो 24 कंडीशन को पूरा नहीं कर सकता, तो इसके माने कि किसी कंट्री में दम नहीं है, इसलिए कि कानून है दीन उन 24 कंडीशनों के बाद पूरे होने वाले हैं, नए के अपनी तरफ से। जैसे एक चोरी किया हाथ काटना, अगर ऐसे ही हाथ काटना तो इन तमाम के हाथ काटना पड़ेगा। कानून है जो जो बिल्कुल चोरी कर रहे हैं जो खुखार हो बन रहे हैं, तो जो बता रहे बहुत अच्छी तरह से कानून है। क्यों हम लोगों को मालूम नहीं है, वी बिकम अपोलोजेटिक। हम लोग क्या करते हैं जब ऐसे सिचुएशन में चले जाते हैं, आपको कॉर्नर कर देते हैं, इस्लाम को कॉर्नर करने की कोशिश करते हैं, आपको शर्मिंदा करते हैं और ये बताते हैं कि हमारा कानून जो है वो ब्यूटीफुल है और तुम्हारा कानून वो ब्यूटीफुल नहीं है, सिर्फ किताबों के हद तक प्रैक्टिकल नहीं है। चुनांचे आज यूएनओ की जो रिपोर्ट वगैरह के सिलसिले में ईरान के सिलसिले में झगड़ा यही है कि ईरान एक्सक्यूट क्यों करता है, इसे ईरान एक्सक्यूट करता है इसलिए कि कवानीन दीन को अपनाया है। कवानीन दीन कहते हैं कि अगर जानिया ने जिना को कबूल किया है उसकी सजा यह है, वो सजा देनी है। तो यूएनओ कहता है कि हमारे कानून के खिलाफ है, चलिए मैं क्या करूं इसको। देखिए अच्छी तरह से समझिए और बहुत अच्छी तरह से और इसको इदराक कीजिए। उम्मीद है कि हम लोग दरअसल समझ के आगे बढ़ेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी यूनिवर्स है सेल्फ, इंडिया जो है मतलब फॉर एग्जाम्पल, मगर इंडिया में दुनिया 222 से ज्यादा लैंग्वेज है, 3000 से ज्यादा डायलैक्ट है, एक दुनिया है। एक बस में बैठिए हर 10 किलोमीटर पे एक इंसान आता है, उसकी सूरत उसका रंग उसकी जबान उसका लहजा अलग है। इंडिया की कैफियत ही ऐसी है कि मुल्क ही ऐसा। उसी तरह से रिलीजन भी बहुत ज्यादा, हिंदुओं में 4 किस्म का मेन आइडियोलॉजी, हिंदू आइडियोलॉजी 4 आइडियोलॉजी, उस 4 में 400 को तकसीम कीजिए 4000 आइडियोलॉजी, मगर मेन उनके 4 आइडियोलॉजी। चुनाचे मरने के बाद कोई जला देते हैं और उन्हीं हिंदुओं में कोई दफन भी करते हैं। कुछ ऐसे हैं मरने के बाद चूंकि इंसान का जिस्म सख्त हो जाता है उसको बिठाने की कोशिश करते हैं, वो बैठ नहीं सकता बेचारा, तो हड्डियां तोड़ते हैं, तोड़ के उसको बिठा देते हैं और कब्र भी ऐसी बनाते हैं वो अंदर वो ऐसे ही उठा बिठाते हैं जैसे वो बैठा होता है। जो भी उनका बिलीव ये बैठा हुआ कब्र में मुमकिन है उनके पास बिलीव ये हो कि अंदर जो है वो जो भी कन्वर्सेशन वगैरह हो वो सी सीटिंग की सिचुएशन है। अब ये मुर्दा हड्डियां को तोड़ के बिठा दिए गए हैं, अगर 10 मुर्दे फैसला करें जिंदों से मुतालिक जिनके हाथों को तोड़ मरोड़ के बिठा दिया गया है और ये फैसला कर रहे हैं उनसे मुतालिक जो जिंदा है, तो क्या कहेंगे आप? अरे भाई मुर्दों का फैसला है, कुरान यही कहता है सुम्मन बुक्मन उम्यन फहुम ला यरजऊन, ये मुर्दा है इनकी बात ना सुनो, मैं मेरी बात सुनो। इस्तजीबु लिल्लाहि वलि रसूलि इज़ा दअकुम लिमा युहयीकुम, अल्लाह रसूल के काल का जवाब शुमार और मौत का शुमार। देखिए बहुत अच्छी तरह से जब इंसान कभी मर जाता है तो हमारे पास वस में भी है आजकल की दुनिया में कि हॉस्पिटल में उसको डेथ सर्टिफिकेट देते हैं। बाजे के कानून है जब तक डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया उस वक्त तक मैयत उठा नहीं सकते। क्या मेरी सही कानून में सही डेथ सर्टिफिकेट क्या कहती है? कहती है कि केमिकली इज गॉन खत्म। जहां दुनिया डेथ सर्टिफिकेट देती है इस्लाम लाइफ की सर्टिफिकेट ढांचे का ताला है। इस्लाम कहता है कि मुर्दा नहीं है, इसको उठाना था सोशलिज्म उठाना, इस पर मक्खी भी बैठती है तो तकलीफ होती है, उठाना था बहुत हिस्सा हिफाजत से उठाना, नहलाना तो बहुत हिफाजत से नहलाना, नजिस लोग करीब ना आना। ढांचे का ताला है, जिसको तुम मुर्दा समझ रहे हो, इस्लाम कह रहा है कि मुर्दा नहीं है, ये जिंदा जमीन जिसमें कहा गया शिया फिक्र को कैसे दबाया जाए, वैसे ही दबाया जाए जैसे मलेशिया में दबाया जाए। आपको मालूम है इस साल मलेशिया में बाज ऐसे देहात है जिसमें पूरे देहात के लिए शिया हो गए थे, वहां पानी बंद कर दिया गया, घरों पर जलाया गया। क्यों, क्या वजह है? और ये लोग सब कर रहे हैं, मैं मुस्कुरा रहा हूं, यकीन कर लीजिए, मेरा यकीन कह रहा है, इस्लाम का यकीन ये कह रहा है, इनका ये एक्ट खुद बता रहा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये यकीन कर लीजिए, जितना ये जुल्म कर रहे हैं उतना ही दीन बना, इसलिए दीन की खसूसियत ही यही है कि जितना ये जुल्म करेंगे उतना ही। दाइश ने एक शहर की मस्जिद को इमाम बागा को शहीद कर दिया और दुनिया देख रही है, उड़ा दिया मस्जिद गली की, मस्जिद को मुसलमान नहीं है तो कि इस्लाम से इसका वास्ता नहीं है। इसलिए कि ये लोग ला यखाफून अल्लाह, अगर इन्नी यखाफु मा रब्बल आलमीन होता, अगर अल्लाह से डर होता तो मैदान जंग में भी वही अमल करते थे जो हुक्म परवरदिगार, अपनी मर्जी से नहीं चलते। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं, वी आर सो बैक। हम लोगों को चाहिए अगर फॉरवर्ड होना है तो दीन की तरफ तवज्जो कीजिए। इंशाल्लाह आपकी स्पीड अब इतना हो जाएगा, आप अंदाजा करेंगे ईरान अब एरोस्पेस इंजीनियरिंग में नंबर 8 पर पहुंचा, इतनी पाबंदियों के बाद नंबर 8 पर। इस बात की दलील है कि अल्लाह की मदद तुम पर होगी अगर तुम अगर काम करो। आज ही मैं रेडियो टीवी देख रहा था, पूरा 24 घंटे टीवी कुरान से मुताबिक, रेडियो कुरान से मुताबिक, कहीं नहीं है ऐसी कंट्री, क्या कर सकते हैं आप, हो सकते ना फिक्र है, पर ये फिक्र जिंदा है, इसीलिए जिंदा फिक्र को जिंदा करने के लिए हमें अमली मैदान में कूदना पड़ेगा अपनी जिंदगी को। मस्जिद आ गए तो, इमाम बारगाह में आ गए तो, मजलिस में चले गए तो मुसलमान नहीं। हमारी पूरी जिंदगी इस्लाम के महबब पे चलाने के लिए लाजमी है कि हम अपनी जिंदगी को उस रुख पर देखें जिस रुख पर इस्लाम चाहता है कि हम चले। इसीलिए कुरान ने साफ कह दिया कि देखो ये राह बड़ी कठिन राह। हजरत नूह को मालूम तारीफ में हजरत नूह को कई मरतबा इतना मारे और यकीन कर चुके कि मर चुके हैं आप, इनमें जिंदगी नहीं। कितने साल जिंदा रहे? 950 साल जिंदा रहे। कितने कश्ती में बैठे? 80। 950 साल में 80। ये दीन इतना ही है, बहुत काम। तो इमाम हुसैन के साथ बाहर का तो परेशानी की आसान। इमाम हुसैन ने मिसाल बात पर कहता हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझिए। होता ही है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई मरीज होता है तो ब्लड की जब जरूरत होती है तो पहली चीज जो देखी जाती है वो ये है कि ग्रुप है कि नहीं है ब्लड, है ना। अगर वो मरीज जैसा भी जो ग्रुप का उसके पास ब्लड है उसी ग्रुप का ब्लड दिया जाए। इस्लाम का बदन भी मरीज था। इमाम हुसैन आगे बढ़े हैं, नाना का इस नाना के इस्लाम मैं तुझे खून दूंगा, मुझे मालूम है कि तेरा बदन कमजोर है, तेरी बॉडी कमजोर है, तेरा सीना कमजोर है, तेरी आंखें कमजोर हैं, तेरा वजूद कमजोर है। अगर सीना कमजोर है तो अली अकबर को दे दूंगा, अगर गला कमजोर है तो अली असगर को दूंगा, अगर बाजू कमजोर है तो अब्बास को दूंगा, लेकिन मेरा सिस्टम ये होगा कि जो इस खून को देने की जरूरत पेश आएगी तो ग्रुप को देखूंगा कि वो जो कर्बला के ग्रुप में आ सके। मेरे पास कसरत की कोई अहमियत नहीं होगी, मेजॉरिटी की कोई अहमियत नहीं। कौन है ये हुसैन कर्बला में? दीन 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 तवज्जो बता ले, पूरे कर्बला की I'm very sorry. मैं जरा सा बात और ब्लंट हो जाता हूँ इस सिलसिले में, मैं बदनाम हूँ कि परेशानी नहीं, मुझे हक बोलना है, मैं बात पर काम करना है, और हक का रास्ता बहुत खतरनाक है, ये मुश्किल काम है। हम लोग यानी शिया, अक्सर शिया करबला को रसाई पहलू से देखते हैं। रसाई पहलू के माने यानी मुसीबतों का पहलू, मसायब का पहलू। करबला के कई पहलू हैं, उनमें से एक पहलू रसाई है। करबला का शजाअत का पहलू है, करबला का अखलाक का पहलू है, करबला का किरदार का पहलू है, करबला में भाईचारगी का पहलू है, करबला में इसारा कुर्बानी का पहलू है। उन पहलुओं पर भी गौर करने की जरूरत है। इमाम हुसैन ने कल बताया था मैंने कि एक रात की मोहलत मांगी बल्कि मोहलत दी। रात को तीन हिस्सों में तकसीम किया, एक हिस्सा अना और हिब्बुस्सलाह। इमाम हुसैन मेरे नौजवान बच्चों, मुहर्रम के जमाने में जब भी मुहर्रम का जमाना था टी शर्ट बना आई लव नमा नीचे इमाम हुसैन, आना और हिब्बुस्सलाह, मुझे आज नमाज पढ़ना है और मुझे आज कुरान पढ़ना है, इसलिए मुझे कुरान पढ़ना बहुत मोहब्बत है। इमाम हुसैन है आपके, इमाम हुसैन, अगर हम मोहब्बत करते हैं इमाम हुसैन से, नमाज से मोहब्बत है, कुरान के पढ़ने से मोहब्बत है। एक हिस्सा इबादत का गुजरा, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों से मुलाकात। ठीक है, सोशल साइंस मसला बहुत अहम है, इसीलिए रसूलुल्लाह ने जुम्मे शाबान के आखिरी जुमा में कई बातें बताएं, रोजे का जाहिर क्या है, रोजे का बातिन क्या है, उनमें से एक कहा वसलू अरहामकुम, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो, भूखे रख के कजा रोजे के वक्त पर इफ्तार कर लेने का नाम रोजा नहीं है। अगर अब तक माँ से बात नहीं किया टेलीफोन करो, बात करो, मम्मा बख्श दीजिए, माफ करना। अगर बहन से नहीं बात किया, छोटी ही बहन क्यों ना हो, बदल हो जाओ, सिलमान का ताका शबे आशुर का दर्श दीजिए। इमाम हुसैन इबादत एक तरफ, दूसरे हिस्से में रिश्तेदारों से मुलाकात। करबला के मैदान में ये कौन सा पहलू है, सिले रहम का पहलू है, रिश्तेदारों से मुलाकात। एक खैमे के सामने बैठते थे, सुनते थे खैमे में हो क्या, और मोहम्मद को माँ बिठा के कह रही है बेटा कल मामू जान का बड़ा इम्तिहान का वक्त है, कल तुम्हारी अपनी जानों का अजीज न करना। इमाम हुसैन ने सुना, आगे बढ़े, अम्मे फरवा कासिम को बिठा, बेटा चचा कहो इम्तिहान का वक्त है, अपनी जान का अजीज न करना। तारीख कहती है कि इमाम हुसैन ने आंखों को उठाया, हाथों को उठाया, परवरदिगार ये कैसी माएं हैं, हर माँ अपने बच्चों की सलामती चाहती है, लेकिन ये माएं कैसी हैं, अपनी कुर्बानियां देने के लिए तैयार है परवरदिगार। क्या फितरत को इन्होंने मोड़ दिया है, सोचे किस बात है। एक वो मकाम हुसैन है जहां पर इस हंगामे में जहां पर जंग कर करनी हो वहां पर रिश्तेदारों से मुलाकात का सिलसिला बाकी है। दुनिया को बता रहे करबला के मसले में आंसू भी बहाओ, लेकिन भाई को भूलो नहीं, बहन को भूलो नहीं, बाप को भूलो नहीं, माँ को भूलो नहीं, रिश्तेदारों को भूलो नहीं। तुम्हारी हयात के अज्जा में से एक जुज यही है कि सिला करो, सिले रहम करो रिश्तेदारों के साथ। एक मरतबा मेहमान में आगे बढ़े, क्या देखा, एक बहन की रोने की आवाज आ रही थी लेकिन कोई सामने मौजूद नहीं था, समझ गए
अब्बास कल हर एक अपनी गोदी को खाली कर रहा है, भाई
بس دو جملے اور ختم ہو گئے, خدا کسی غم میں نہ رولائے. مالک ہمارے روزوں کے اثر تو با اثر ان آنسوں کے ذریعے سے کر دے. مالک دین فہمی میں ہمارے قدموں کو اور آگے بڑھا دے, دین پر عمل کرنے میں ہمیں اور آگے بڑھنے کی توفیق عنایت فرما. مالک کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ عباس سے با وفا. عباس نے چراغ و با وفا کے جلا دیے, عباس نے چراغ وفا کے جلا دیے, منہ سے نہیں عمل سے ثبوت وفا دیے. حد ہے کہ مشک بھرنے میں جو ہو گئے تھے تر, عباس نے ان ہاتھوں کو اپنے چٹر. شب عاشور ہیں, عباس کے سامنے مشعل جل رہی ہے اور عباس تلوار پر سائیکل کر رہے ہیں. عباس علی کرتے ہیں تلوار پر سائیکل, سہمی ہوئی ہے رات سحر کانپ رہی ہے. سامنے مشعل ہے اور جذبہ ایثار و قربانی, کل بڑی اجازت مل جائے تو دنیا کو بتا دوں گا میں کس کا بیٹا. جذبہ چہرے سے وقار جلال نمایاں ہیں. دو نام کربلا میں ایسے ہیں جو الگ کبھی نہیں ہوتے, جب بھی ایک کا نام لیں گے دوسرے کا نام لینا ضروری ہے. جب بھی عباس کہیں گے سکینہ کو یاد کرنا ضروری ہے, جب سکینہ کہیں گے تو عباس کو یاد کرنا ضروری ہے. دور سے سکینہ نے دیکھا چچا کے چہرے پر جلال ہے, دوڑی بھی آئی, بابا بابا چچا غصہ آ گیا ہے, دیکھیے کیسا جلال ہے. حسین نے دیکھا ہو بہو علی کا جلال ہے, اب اس کو روکے کون؟ علی کے جلال کو روکنا آسان نہیں ہے, فاطمہ کی ضرورت ہے. آئے زینب کے پاس, بہن تم سانیہ زہرا ہو, تم ماں کی بیٹی ہو, جاؤ جا کر کے عباس کو تو. ہم بھی جوان تھے, ہم بھی ماتم کی, ہم نے بھی ماتم کیا. جو لوگ زنجیر کا ماتم کرتے ہیں دیکھیے ان کا جوش کیا ہوتا ہے جب ماتم ہوتا ہے. اگر ہاتھ پکڑے تو کہتے ہیں ہٹو, کوئی مجھے روک نہیں سکتا, اس لیے کہ اس وقت جوش ہے. مگر عباس نے جو کردار پیش کیا ہے وہاں جوش کو مانا دیا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ زینب آہستہ آہستہ ماں کے قدموں کے انداز میں قریب آتی ہیں, آواز دیتی ہیں عباس. مگر عباس کو یہی فکر ہے کہ کل اجازت مل جائے, پوری ہوش اسی میں ہے, پورا سرگرمی اسی میں ہے کہ کل اجازت مل جائے. ادھر سے پھر عباس جواب نہیں آیا, تیسری مرتبہ تھا ماں فاطمہ, ایک مرتبہ عباس کھڑے ہو گئے. بی بی آپ نے کیوں زحمت کی؟ شہزادے آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی, آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ نے حکم دے دیا ہوتا تو میں خود آ جاتا. بات ہی کچھ ایسی, عباس مجھے آنا پڑا, بتاؤ اگر کوئی میں خواہش کروں تو تم پورا کرو گے؟ پورا کرو گے؟ عباس نے کہا شہزادی حکم دیجیے, آپ کے قدموں پہ کائنات رکھ دو, آپ بتا دیجیے کیا کرنا ہوگا. عباس سوچ لو جو کہہ رہی ہوں شاید تمہارے لیے تکلیف دہ ہو. عباس نے کہا شہزادی آپ جو چاہیں کہیں. زینب نے کہا عباس ذرا تلوار کو نام بلند فرما. دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو، سرپرستوں کو تحس محس کر دے، مظلومین کی مدد فرما، مومنین جہاں جہاں ہم کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، مومنین عراق، مومنین پاکستان، مومنین افغانستان، مومنین بحرائن، مومنین یمن، مومنین حجاز، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، پروردگار جو پریشان عالم کی پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو شفا دے، پروردگار ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور ہو، حسد ہو، کبر ہو، نفاق ہو، نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہونے پور کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن گاہتے ہیں ان کی گاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، جو ہمیں بانٹ رہا ہے تو اس کو بانٹ دے، ہمیں ظہور کے قابل بنا دے، مالک جو لوگ شرکت کنندگان ہیں، جو لوگ افطار میں حصہ لے رہے ہیں اسی طرح سے افطاری میں حصہ لے رہے، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، مالک حق محمد والے محمد جلد سے جلد ہمارے مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصر و نشمار